تفسير إن الذين كذبوا بآياتنا يقينا جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا واستكبروا عنها اور کبر کیا ان سے اور ان کے مقابلے میں سرکشی اختیار کی. آپ نے کل کے سبق میں یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ رب العزت نے جو تھے رسول بھیجے اور جتنے بھی رسول آئے وہ کیا کرتے تھے, یقصون علیکم آیاتی, وہ اللہ کی آیات لوگوں تک پہنچاتے تھے. اور پھر لوگوں کے دو رویے بھی آپ نے پڑھے, ایک ایمان لائے عمل صالح اور اس کے مطابق جنت, اور دوسرے لوگ جو تھے وہ کون تھے, والذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون, کہ انہوں نے آیات کو جھٹلایا بھی اور سرکشی بھی اختیار کی تو وہ دوزخ والے. اور پھر آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ کیسے یہ آپس میں ایک دوسرے پر جو ہیں جو دوزخ میں جائیں گے, تو ہر گروہ دوسرے پر جو ہے وہ کیسے لان تان کرے گا, الزام دھرے گا, تانے دے گا, کہے گا کہ فلاں کی وجہ سے میں جو ہے وہ گناہگار ہو گیا, فلاں نے مجھے بہکا دیا. تو پھر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ سب کے لیے عذاب ہے, تم سب دگنے عذاب کے مجرم ہو, کیونکہ ہر ایک نے اپنی اپنی جگہ برا کام کیا ہے. کسی نے جو ہے وہ رہنمائی کی گناہ کی اور کسی نے اس کو فالو کیا, تو دونوں ہی مجرم ہوئے نا. تو اب جو ہے مزید انجام بتایا جا رہا ہے ان لوگوں کا جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. تو ہم سے مراد کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات, ہمارے پیغام کو, ہمارے قرآن کو, ہمارے رسول کو جنہوں نے جھٹلایا. واستكبروا عنها اور انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور دوسروں کو حقیر, رسول اور اس کے ساتھیوں کو حقیر, میرے کلام کو حقیر. واستكبروا عنها اور پیغام کے مقابلے میں سرکشی اختیار کی. یہ دو جرم اتنے بڑے جرم ہیں, یہ دو گناہ جو تھے یہ اتنے بڑے گناہ ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی چیز کو نہ ماننا, کہ ہم اس کو نہیں مانتے, اور دوسرا یہ ہے کہ انکار کرنے کے بعد اس کا مذاق اڑانا ہے نا, اس کے ساتھ برا رویہ اختیار کرنا. مثلاً آپ کو آپ سے کوئی چیز مانگتا ہے, آپ اس کو کہتی ہیں کہ میرے پاس نہیں ہے, اور ایک آپ دیں اور بدتمیزی سے کہیں کہ نہیں ہے اور اوپر سے اس کی پٹائی بھی کر دیں, ہے نا, تو یہ اور سخت رویہ ہے نا. آپ کو کوئی چیز پیش کرتا ہے کہ آپ یہ چیز لے لیجئے, اور وہ چیز بڑی اچھی ہے آپ کو پسند, آپ اس کو کہتی ہیں نہیں مجھے یہ پسند نہیں آئی, مجھے نہیں یہ چاہیے, پر آپ اس کو اٹھا کے گرا دیتی ہیں, پھینک دیتی ہیں, توڑ دیتی ہیں, ہے نا. تو ایک یہ ہے کہ اس کو جھٹلا دینا, دوسرا یہ ہے کہ سرکشی اختیار کرنا اور زیادہ برا سلوک کرنا. سمجھ آئی؟ کہ آپ کے پاس کسی کے پاس بھی جیسے گلاس میں کوئی کوئی چیز پیش کرے تو آپ کو پسند نہیں آئی, اچھی نہیں لگی, آپ کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے, آپ اچھے سے جواب دے دیتے ہیں, آپ نے انکار کر دیا. دوسرا یہ کہ آپ اٹھا کے گلاس کو ہی توڑ دیں, اس چیز کو ہی پھینک دیں, ہے نا. تو یہ ہے کہ کذبو, جھٹلایا بھی, اور پھر کبر کا رویہ اختیار کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھا, اپنی بڑائی, اس چیز کو دوسروں کو حقیر سمجھا. تو آپ سوچیں کہ یہاں پہ اللہ کی آیات کو کافروں نے جھٹلایا, ایک تو یہ کہ مانا نہیں بلکہ کذبو, جھٹلایا, تو اس میں بھی شدت ہے. اور دوسری بات کیا ہے کہ ان کے مقابلے میں سرکشی اختیار کی, کہ یہ تو کبھی جادوگر, کبھی ساحر, کبھی کاہن, کبھی مجنون, کبھی دیوانہ, کبھی آیات کا مذاق, کبھی فرشتوں کا مذاق, کبھی جنت کا, کبھی جہنم کا, کبھی اللہ کا, کبھی ایمان لانے والوں کا, استہزاء کرتے تھے نا, یستہزئون. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تفتح لهم ابواب السماء, ان کے لیے ہرگز نہیں کھولے جائیں گے آسمان کے دروازے. یہ بھی ہو سکتا تھا نا कि उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, हरगिज नहीं खोले जाएंगे कहा जा रहा है। क्यों? जुर्म बहुत शदीद है। जैसे एक बात यह है ना कि कोई आ रहा है और आप दरवाजा बंद कर देते हैं और कहते हैं मैंने दरवाजा नहीं खोलना, और एक आप खींच के बंद कर लेते हैं, जोर से बंद कर लेते हैं और कहते हैं हरगिज नहीं मैं अब दरवाजा खोलूंगे। दोनों रवैयों में फर्क है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि उनके लिए हरगिज नहीं आसमान के दरवाजे खोले जाएंगे। आप देख लीजिए कि आसमान के जो दरवाजे हैं ये कब खोले जाते हैं और कब नहीं खोले जाते, है ना। तो इस सिलसिले में भी जो हमें रवायात से पता चलता है वो ये है कि जैसे कि मतलब दरवाजे जो खोले जाते हैं, जैसे आपको पता ही है कि जब कयामत आएगी आसमान दरवाजे दरवाजे हो जाएगा, और दरवाजे कब खुलते हैं, जब फरिश्ते आते हैं कोई पैगाम लेकर, जब रूहों को लेके ऊपर जाते हैं तब दरवाजे खुलते हैं, है ना। और बाज़ औक़ात दरवाजे जो हैं वो किस लिए खुलते हैं कि इंसान के जो अमाल हैं जब ऊपर चढ़ाए जाते हैं, अमाल हैं उनकी रूहें हैं। तो यहाँ पे मुफस्सरीन ये कहते हैं कि दरवाजे नहीं खोले जाएंगे किसके लिए, उनके अमाल के लिए। बाज़ लोगों ने अमाल मुराद लिए हैं कि उनके अमाल के लिए दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, बाज ने कहा है कि उनकी रूहों के लिए दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, बाज ने इससे दुआ मुराद ली है, यानी उनके अमल उनकी रूहें या दुआओं के लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, यानी उनके अमाल और उनकी दुआएं कबूल ही नहीं होंगी और उनकी रूहें जमीन पर लौटा दी जाएंगी। तो इस सिलसिले में मुफस्सिर कुरान अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि ना इन लोगों के आमाल के लिए दरवाजे खोले जाएंगे और ना ही उनकी दुआओं के लिए। क्या मतलब है इसका? कि आपको पता है कि दुनिया में इंसान जो कुछ भी अमल करता है और जो भी दुआएं मांगता है तो फिर वो अल्लाह ऊपर जाती हैं, आसमानों पर चढ़ती हुई, आसमानों के मुख्तलिफ दर्जों को तय करती हुई वो अल्लाह के सामने पेश की जाती हैं, है ना। तो वो दुआएं जो हैं तो और वो अमाल जो हैं जो ठीक नहीं हैं, जिनमें शिर्क है किब्र है या गलत चीज़ें हैं, सही इखलास नहीं है या इसी तरह दुआएं ठीक नहीं हैं, तो ये है कि वो ऊपर जाने से रोक दी जाएंगी, एक मकाम पर पहुंच कर उनको रोक दिया जाएगा। और सूरत मुतफ़फ़ीन में भी हमें जो है वो इसी तरह का मजमून मिलता है, जिससे ये बात पता चलती है कि इंसान के जो अमाल हैं वो कहाँ रखे जाते हैं, है ना। तो दो जगह हैं जहाँ इंसान के अमाल जो हैं वो रखे जाते हैं, उनमें से एक जगह तो है अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कल्ला इन्न किताब अल-फुज्जार लफी सिज्जीन وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ। यकीनन बदकारों का नामा अमाल सिज्जीन में है। मुझे क्या मालूम सिज्जीन क्या है, ये तो एक लिखी हुई किताब है। तो अब देख लीजिए कि सिज्जीन जो है कैद खाने को भी कहते हैं, तंग जगह को भी कहते हैं। बाज कहते हैं कि जमीन के सबसे निचले हिस्से में एक जगह है जहाँ काफरों जालिमों मुशरिकों की रूहें उनके अमाल नामे जमा कर दिए जाते हैं। तो दूसरी जो जगह जहाँ नामे अमाल रखे जाते हैं वो क्या है, कल्ला इन किताब अल अबरार लफी इल्लीयीन وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ। यकीनन नेकों कारों का नामा अमाल इल्लीयीन में है। तुझे क्या पता कि इल्लीयीन क्या है, लिखी हुई किताब है। इसके पास मुकर्रब फरिश्ते हाजिर हैं। तो अब यहाँ पे देखें इल्लीयीन इलियीन ही उलू से है, बुलंदी। अब सिजीन क्या है? निचला हिस्सा है। और इलियीन जो है वो क्या है? आसमानों में, जन्नत में, या सिदरतुल मुंतहा में, या अर्श के पास, यानी बुलंदी में है नेक लोगों की रूहें और उनके नामाए आमाल, और उनके पास मुकर्रम फरिश्ते जो हैं वो हाजिर होते हैं। हमें एक हदीस भी मिलती है इसकी ताईद में, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह नो और दूसरे सहाबाए कराम इस आयत की तफसीर जो करते हैं कि मुनकरीन और कुफार की रूहें उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते, ये रूहें नीचे पटक दी जाती हैं। और हदीस जो है वो हजरत बरा बिन आजिब रजी अल्लाह नो रवायत करते हैं अबू दाऊद, निसाई, इब्न माजा और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह से, जिसका निचोड़ ये है, इख्तसार ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी अंसारी सहाबी के जनाजे में तशरीफ ले गए, अभी कब्र की तैयारी में कुछ देर थी तो एक जगह बैठ गए, और सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हो आपके गिर्द खामोश बैठ गए। आपने सर मुबारक उठाकर फरमाया कि मोमिन बंदा के लिए जब मौत का वक्त आता है तो आसमान से सफेद चमकते हुए चेहरों वाले फरिश्ते आते हैं, जिनके साथ जन्नत का कफन और खुशबू होती है, और वो मरने वाले के सामने बैठ जाते हैं। फिर फरिश्ता मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और इसकी रूह को खिताब करते हैं कि ऐ नफ्से मुतमईना, रब की मगफिरत और खुशनुदी के लिए निकलो। उस वक्त उसकी रूह इस तरह बदन से बआसानी निकल जाती है जैसे किसी मशकीजे का दहाना खोल दिया जाए तो इसका पानी निकल जाता है। इसकी रूह को फरिश्ता मौत अपने हाथ में लेकर इन फरिश्तों के हवाले कर देता है। ये फरिश्ते इसको लेकर चलते हैं, जहां इनको कोई फरिश्तों का ग्रोह मिलता है वो पूछते हैं ये पाक रूह किसकी है? ये हजरात इसका वो नाम लकब लेते हैं जो इज्जत और एहतराम के साथ इसके लिए दुनिया में इस्तेमाल किया जाता था, और कहते हैं कि ये फला इब्ने फला है, यहां तक कि ये फरिश्ते रूह को लेकर पहले आसमान तक पहुंचते हैं और दरवाजा खुलवाते हैं। दरवाजा खोला जाता है, यहां से और फरिश्ते भी इनके साथ हो जाते हैं, यहां तक कि सातवें आसमान पर पहुंचते हैं। इस वक्त हक ताला फरमाते हैं कि मेरे इस बंदे का अमाल नामा इलियीन में लिखो और इसको वापिस कर दो। ये रूह फिर लौट कर कब्र में आती है और कब्र में हिसाब लेने वाले फरिश्ते आकर इसको बिठाते और सवाल करते हैं मन रब्बू का मा दीनू का। वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह ताला है और दीन इस्लाम है। फिर सवाल होता है कि ये बुजुर्ग जो तुम्हारे लिए भेजे गए हैं कौन हैं? वो कहता है ये अल्लाह ताला के रसूल हैं। इस वक्त एक आसमान से आवाज आती है कि मेरा बंदा सच्चा है, इसके लिए जन्नत का फर्श बिछा दो और जन्नत का लिबास पहना दो और जन्नत की तरफ इसका दरवाजा खोल दो। इस दरवाजे से इसको जन्नत की खुशबुएं और हवाएं आने लगती हैं और इसका नेक अमल एक हसी सूरत में इसके पास इसको मानूस करने के लिए आ जाता है। ये कहां की बात हो रही थी? कब्र की। ये कब्र की बात हो रही थी। इसके बिलमुकाबिल काफिर और मुनकिर का जब वक्त मौत आता है तो आसमान से स्याह रंग महीब सूरत फरिश्ते खराब किस्म का टाट लेकर आते हैं और बिलमुकाबिल बैठ जाते हैं, और फिर फरिश्ता मौत इसकी रूह इस तरह निकालता है जैसे कोई खारदार शाख गीली ऊन में लिपटी हुई हो, इसमें से खींची जाए। अब सोचे तो सही जरा कि कांटों वाली टहनी है और गीली ऊन में लिपटी हुई है, किस तरह जुड़ी हुई है। अब उससे उसको खींचा जा रहा है, ये रूह निकलती है तो इसकी बदबू मुर्दार जानवर की बदबू से भी ज्यादा तेज होती है। आप देखें गोश्त आप साफ करें ना और आप कचरा मत फेंके, थोड़ी देर उसका कुछ देर पड़ा रहने दें, उसी से एक सड़ान आनी शुरू हो जाती है। फरिश्ते इसको लेकर चलते हैं, राह में जो दूसरे फरिश्ते मिलते हैं तो पूछते हैं कि ये किस खबीस की रूह है। ये हजरात उस वक्त उसका वो बुरे से बुरा नाम और लकब जिक्र करते हैं जिसके साथ वो दुनिया में पुकारा जाता था कि ये फलां बिन फलां है। अब देखें कि क्यों उसकी लाश से बदबू आएगी, बुरे अमलों की वजह से, कीना, कुदूरत, ज्यातियां, गीबत, चुगली, बदअमालियां, उसकी वजह से उसमें से बदबू आएगी। यहां तक कि सबसे पहले आसमान पर पहुंचकर दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं तो इसके लिए आसमान का दरवाजा नहीं खोला जाता, बल्कि हुक्म यह होता है कि इस बंदे का अमाल नामा सिज्जीन में रखो। यहाँ नाफरमान बंदों के नामा अमाल रखे जाते हैं और इस रूह को फेंक दिया जाता है, वो बदन में दोबारा आती है। फरिश्ते उसको बिठा कर इससे वही सवाल करते हैं जो बंदा मोमिन से किए जाते हैं। ये सबका जवाब ये देता है, हा हा लादरी, हा हा लादरी, हाय मेरी बदबख्ती, मैं कुछ नहीं जानता। इसलिए कि जहन्नुम का फर्श, जहन्नुम का लिबास फिर उसको दे दिया जाता है और जहन्नुम की तरफ दरवाजा खोल दिया जाता है जिससे इसको जहन्नुम की आंच और गर्मी पहुंचती रहती है और इसकी कब्र इस पर तंग कर दी जाती है। नऊज़ बिल्लाह, अल्लाहुम्मा ला अज, अल्लाह ताला तू हमें इन लोगों में शामिल ना करना, अल्लाहुम्मा ला तजअल मिनहुम। तो इस पूरी हदीस से हमें क्या बात पता चली कि जो काफिर हैं, जो मुनकिर हैं, उनकी रूहें आसमान की तरफ ले जाई तो जाती हैं, लेकिन यह कि उनके लिए आसमान का दरवाजा नहीं खुलता, इसलिए नीचे फेंक दी जाती है। ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस समा, ये है कि इन रूहों के लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते, उनका कोई वेलकम नहीं है, उनको कोई खुश आमदीद नहीं है। وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ, और वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते उस वक्त तक जबकि ऊंट जो है वो सुई के नाके में से गुजर जाए, यानी उनका जन्नत में जाना इतना ही नामुमकिन है जितना के सुई के नाके से ऊंट का गुजरना। तो जिस तरह एक अजीमुल जुस्सा जानवर, एक बड़ा जानवर ऊंट जो है वो सुई के सुराख में दाखिल नहीं हो सकता, धागा तक डालना मुश्किल होता है, तो जब वो कभी मुमकिन ही नहीं, और दुनिया में यानी आप देखें कि नामुमकिन उल अमल चीज है तो ये है ही नहीं, महाल है। तो इस तरह ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह की आयात को झुठलाया, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के पैगाम, जो वादा था अल्लाह सुबह रब्बिकुम वाला, उसको झुठलाया। तो अब ये लोग जो हैं ये जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। ये शिद्दत का इजहार है, ये अल्लाह की तरफ से नाराजगी का इजहार है कि ये वो लोग हैं कि जिनको निहायत जिल्लत के साथ जो है इनको बहुत बुरी तरह से जो है ना हंका दिया जाएगा, इनको लौटा दिया जाएगा, इनकी कोई इज्जत नहीं, इनके लिए कोई फाटक, कोई दरवाजा जो है वो नहीं खोला जाएगा, इनके लिए कोई खैर मकदम करने वाला नहीं है। आप देखिए दुनिया में भी आप कहीं जाते हैं, दाखिल होते हैं तो लोग खड़े हुए होते हैं, आपको देख कर खड़े हो जाते हैं, कभी ये कि कोई साहेब है, ऑफिसर है, डॉक्टर है, गवर्नर है, कोई किंग है, कोई बादशाह है, तो उसके लिए लोग दोनों दो रवैया दोनों तरफ खड़े होकर ना उसको वेलकम करते हैं, उसके लिए दरवाजा खोला जाता है, फूल जो है उस पर गिराए जाते हैं, बहुत अच्छे से खुश आमदीद कहा जाता है ना। तो यहाँ पर जो बात बताई जा रही है कि ना कोई मरहबा है, ना कोई सलाम है, ना कोई फूल है, ना कोई नारे हैं, कुछ भी नहीं है, बल्कि क्या है, तजलील है। जैसे कैदी नहीं होता कि वो जेल के फाटक की खिड़की के अंदर ठोंस दिया जाता है, तो बिल्कुल उसके लिए ये है कि ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस समा, तो जन्नत के दरवाजे उसके लिए जो है वो बिल्कुल नहीं खोले जाएंगे। तो क्या मतलब है कि मुतकब्बिर जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, किब्र करने वाला, अपने आप को बड़ा समझने वाला, रियाकारी करने वाला। अखबार में जो है वो जो अल्लाह की आयात का मजाक उड़ाते हैं, एक तस्वीर भी छपी कि जिससे क्या बात पता चलती है कि एक सुई है और उसमें से जो है ना ऊंट को गुजरते हुए दिखा रहे हैं उसके सुराख से, कि कुरान में तो है ना हो नहीं सकता, और आप देखें कि नामुमकिन है ना। आम तौर पे जो सुई होती है उसमें इतना सुराख होता है कि मुश्किल से धागा गुजरता है, तो लेकिन म्यूजियम में आर्ट गैलरी में इस चीज को किसी ने बनाया, पेश किया और फिर अखबार में भी वो आया। तो अल्लाह की आयात का मजाक ये है, कज़्ज़बू भी आयातिना वस्तकबरू अनहा, यानी इस तरह से भी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वकज़ालिका नज़्ज़िल मुजरिमीन, और इसी तरह हमारे यहाँ मुजरिमों को बदला मिला करता है। लहुम मिन जहन्नम मिहाद, इनके लिए तो जहन्नुम होगी, जहन्नुम जो है वो इनका बिछोना होगी। वमिन फौकहिम गवाश, और जहन्नुम ही इनका ओढ़ना होगी। तो यहां पर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि जहन्नुम, उसकी हौलनाकियां, उसकी आग हर तरफ से इनको जो है वो ढांप लेगी। तो पहली आयत बड़ी ही सख्त है इस एतबार से कि जन्नत से महरूमी का ऐलान है, कि ला यदखुलून अल-जन्नता, कि वो जन्नत में दाखिल ही नहीं होंगे। दूसरी आयत में क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, कि ये वो लोग हैं कि अब इनको जहन्नुम हर तरफ से ढांप लेगी, ऊपर से भी नीचे से भी, है ना। इनका इनके दिल में इस्तकबार था, इनके दिल ने कुरान को कबूल नहीं किया, तो अब क्या है कि अल्लाह की बादशाही में, आसमान की बादशाही में ये नहीं दाखिल हो सकते, जन्नत की खुशबू इनको नहीं मिल सकती। अगर इनको कोई चीज मिल सकती है तो क्या आग, जहन्नुम, उसकी हौलनाकियां, उसकी दहशतनाकी, उसका चीखना चिल्लाना, उसकी जो सजा है वो उसको जो है वो मिलेगी। और फिर आप देखें कि यानी जन्नत में दाखला उनका इस तरह नामुमकिन है जैसे किसी तंग चीज में कोई बड़ी चीज को घुसा दिया जाए, घुसेड़ दिया जाए तंग चीज में, इसी तरह वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। और अब हर तरफ से ऊपर नीचे आगे पीछे उनके क्या है, जहन्नुम है ना। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, क्या कहेंगे आप लोग? आमीन, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आमीन, के अल्लाह तू हमें जहन्नुम वालों में, आग वालों में ना शामिल करना। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, या रब्बुल इज्जत तू हमें इन लोगों में शामिल ना करना। यहाँ पे क्या फरमाया फिर कि वकजालिका नजजी जालिमीन, और इसी तरह यही जजा जो है हम जालिमों को दिया करते हैं। आप गौर करें इस बात पर कि पहले क्या जजा दी, कि जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते, तो ऊपर कहा व कजालिका नजिल मुजरिमीन, यहां कहा व कजालिका नजिल जालिमीन। ये और भी ज्यादा शदीद आयत है कि अजाबे जहन्नुम का जिक्र और साथ ये कहना कि ये है जालिमों का बदला, ये आयत 40 से भी ज्यादा सख्त है। और आपको पता ही है कि जहन्नुम जो है वो उसमें जो है वो ऐसे लोगों के लिए आग ही हर तरफ से उनको आग की लपटें। आप सोचें इस बात पर कि जरा सी गर्मी होती है, जरा सी गर्मी होती है तो ऐसे लगता है कि दिल घबरा रहा है, सांस नहीं आ रहा, और अगर लाइट चली जाए तो क्या है कि एसी बंद हो गया तो उठ कर बैठ जाते हैं, आंख खुल जाती है ना, और सुकून नहीं रहता, है ना। गर्म इलाकों में खास तौर पर इस बात का तसव्वुर करें, और यहाँ पे चंद दिन की गर्मी पड़ी है जो कि बर्फ का इलाका है कनाडा, बर्फ ही बर्फ जहां पे होती है, और गर्मी के मौसम में भी वो गर्मी नहीं होती, तो लोग कहते हैं कि इट्स टू हॉट, बहुत गर्मी है, और हाथ और किताब और फाइल और पंखा और कागज और टिश्यू कुछ भी होता है हाथों से उसको हिलाना शुरू कर देते हैं, है ना। तो यानी ये एक और इंतहा है, लेकिन वहां पे क्या होगा, नीचे भी आग ऊपर भी आग। आप तसव्वुर करें इस बात का कि अगर ऊपर गर्मी हो तो इंसान सोचता है कि पांव ही किसी ऐसी जगह रख ले जहां जो है वो ठंडक हो, और कोई छतरी ऊपर ले ले, कोई पांव में कुछ पहन ले, लेकिन ये कि ऊपर भी आग और नीचे भी आग। दुनिया की आग से जहन्नुम की आग कितने दर्जे ज्यादा है? 69 दर्जे है ना, 70 दर्जे कुल आग के एक दुनिया में, और 69 जो है वो अल्लाह ताला ने जहन्नुम के लिए जो है वो रख लिए हैं, और अब इस आग ने हर तरफ से इन लोगों को घेर लिया है। वल्लजीना आमनू व अमिलुस सालिहाती, रहे वो लोग जो ईमान लाए और अमले सवाले किए, ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हम किसी भी नफ्स पर उसकी वुसअत से बढ़कर बोझ नहीं डालते। तो यहाँ पर अल्लाह ताला अहले ईमान जो हैं उनका तारुफ करवा रहे हैं और बता रहे हैं कि ईमान और अमले सवाले लाने वाले ये वो खुशकिस्मत लोग हैं कि ये ऐसी चीजें नहीं थी ईमान और अमले सवाले जो उनकी ताकत से बढ़कर थी। हमने तो इंसान से वही चाहा जो वो कर सके। क्यों? ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हम तो जो अमल इंसान से चाहते हैं, जो अताअत चाहते हैं, वो ऐसी है जिसको हर इंसान सहूलत से कर सकता है। और जब उन्होंने उसको किया, जब वो अमाले स्वाले बजा लाए, जब हर शख्स अपनी सेहत, अपनी उम्र, अपने हालात, अपने वक्त के लिहाज से जब उसने अमल किया, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या है, उलाइका असहाबुल जन्ना, ये हैं जन्नत वाले लोग। तो यहां पर अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत बात की तरफ मुतवज्जो किया है कि जन्नत में जाने वाले क्यों जन्नत में गए। इन्होंने ईमान चाहा, अल्लाह ने इनको ईमान की तौफीक दी, इन्होंने अपने हालात के मुताबिक अपना सर अल्लाह की बंदगी में दे दिया, रुके नहीं, ठिटके नहीं, सोचा नहीं, कहा कि जो मैं हूं वो मैं कर सकती हूं मैं करती हूं, जो मैं कर सकता हूं वो मैं करता हूं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं तो ऐसा नहीं हूं कि किसी भी नफ्स पर उसकी वुस्सत से बढ़कर बोझ डालूं और उससे वो चाहूं जो वो कर ही ना सके। तो जब इस्तेदाद भर उसने अमल किए जो मुश्किल नहीं थे, तो हमने भी उनको जन्नत में दाखिल कर दिया। और ये कौन लोग हैं? उलाइका असहाबुल जन्ना, ये जन्नत वाले लोग हैं, हम फीहा खालिदून, और इसमें हमेशा रहेंगे। कितनी खुशकिस्मती है किसी शख्स की कि उसके लिए ये ऐलान कर दिया जाए कि तुम्हारे लिए जो है वो जन्नत है। आप सोचते हैं कि किसी को यह कह दिया जाए दुनिया में कि तुम पास हो, तुम पास हो, तुम्हारा इंटरव्यू, तुम्हारा रिटन टेस्ट पास है, तुम्हारा दाखिला हो गया, तुम्हारा एडमिशन हो गया, तो उनको ये कहा जाएगा, और साथ ही ये कि हम फीहा खालिदून, कि वो जन्नत में हमेशा रहेंगे। फिर यहां पर एक और अहम खुशखबरी जन्नतियों को दी जा रही है। अल्लाह ताला पहले जन्नत पर अपने एक इनाम का जिक्र कर रहे हैं, और वो इनाम क्या है? वह नजा नमा फी सुदूरहिम मिन गिल्लिन, के हम इनके दिलों से खींच कर निकाल लेंगे, मिन गिल्लिन कुदूरत कीना हसद में से। तो क्या मानी है इसके? इसका मतलब ये है कि अहले जन्नत जो है जन्नत में दाखिल होने से पहले इनके दिल जो हैं उनको साफ कर दिया जाएगा। अगर इनके सीनों में एक दूसरे के खिलाफ कोई बुगत, अदावत, नफरत, हसद, कीना, गिल के जो जज्बात थे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि हम क्या करेंगे, वनजाना, हम खींच कर निकाल देंगे। जैसे होता है ना कि कोई किसी चीज, कोई चीज जो है एक तो ऊपर ही ऊपर होती है ना, तो आसानी से आप उसको पकड़ लेते हैं, और एक होती है कि जड़ों तक नीचे होती है, दिल के अंदर, दिल की गहराइयों में किसी के खिलाफ कोई जज्बात है, कि जैसे किसी से दिल बुरा हुआ हुआ है, कोई नाराजगी है, कोई बेजारी है, कोई कदूरत है, तो आप इंसान दुनिया में जो नेक लोग हैं कोशिश करते हैं, फिर भी दिल में कुछ कमी बेशी है। तो जन्नत वो जगह है कि वहां पे दिल जो है एक दूसरे से बिल्कुल साफ होंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको जन्नत में दाखिल होने से पहले उनके दिलों को जो है वो गिल से, वो जो भी उसके बुरे जज्बात हैं उससे जो है वो साफ कर देगा, उससे उनको जो है वो पाक कर देगा। तो एक तो इसके ये मानी है। बाज लोग ये कहते हैं कि जन्नत में अहले जन्नत के दरमियान मुख्तलिफ दर्जे होंगे उनके अमलों के मुताबिक, लेकिन वो एक दूसरे से हसद नहीं करेंगे, वहां पे एक दूसरे से हसद नहीं करेंगे। तो ये भी इसके एक मानी हैं। और जो पहले मानी है कि दुनिया में अगर किसी की कोई लड़ाई हुई, किसी से कोई भी जो है वो नाराजगी हुई, तो वहां पे अल्लाह ताला जो है जन्नत में दाखिले से पहले जो है वो उनके दिलों को साफ कर देगा। तो क्या मतलब है इसका? सही बुखारी में है कि मोमिनीन जब पुल से रात से गुजर कर जहन्नुम से निजात हासिल कर लेंगे तो इनको जन्नत और दोजख के दरमियान एक पुल के ऊपर रोक दिया जाएगा, एक ब्रिज और आएगा। और इनके आपस में अगर किसी से किसी को रंजिश थी या किसी पर किसी का हक था तो यहां पहुंच कर एक दूसरे से इंतकाम लेकर मामलात साफ कर लिए जाएंगे और इस तरह हसद, बुगद, कीना वगैरह से पाक साफ होकर जन्नत में दाखिल होंगे। इस आयत को पढ़कर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मेरे और उस्मान और तलहा और जुबैर रजी अल्लाह अन्हुम के दरमियान भी सफाई करवा देगा। अच्छा, अब यहां पर एक सवाल ये पैदा होता है कि ये कीना कदूरतें जो हैं वो साफ कर दी जाएंगी जन्नत में दाखिल होने से पहले, लेकिन जो अहम बात है वो क्या है कि जो भी हिसाब किताब होगा तो वहां पे हिसाब किताब में कोई माल, कोई दौलत, कोई करेंसी, कोई डॉलर वो तो नहीं काम आएगी ना, एक दूसरे के अमल दिए जाएंगे। तो आप सोचें कि कीना कदूरत क्यों होती है किसी से, हसद क्यों होता है, गिल क्यों होता है, नाराजगी क्यों होता है, वो अच्छा नहीं लगता ना, या उसका कोई अमल अच्छा नहीं लगता, या हमारे अंदर कोई कमी होती है जिसकी वजह से हम खुद ब खुद अपने दिल में बदगुमानी का पहाड़ बना लेते हैं। और बाज़ुकात दूसरे को खबर भी नहीं होती। और जो शख्स नेकी की तरफ जितनी तेज रफ्तारी से बढ़ता है ना, शैतान उतनी तेज रफ्तारी से उसके खिलाफ हो जाता है। वो सोचता है कि नेकी से इसको कैसे हटाऊं, इसके दिल में कैसे दूसरों के लिए कोई हसद, कोई बदगुमानी या बुरे जज्बात जो है वो पैदा करूं, है ना। तो इतनी मुश्किल से इंसान नेकियां कमाए और फिर जब कोई करेंसी नहीं होगी फिर उन लोगों के हवाले नेकियां कर दी जाएं जो अच्छे भी ना लगते हो, है ना। दुनिया में तो होता है ना, कोई नाराज हो गया तो राजी करने के 100 तरीके कि आप कैसे करें उसको राजी, दावत कर लें, तोहफा दे दें, पिकनिक पे ले जाएं, माफी मांग लें, कुछ भी करें, है ना। 100 तरीके आप सोचते हैं कि ऐसे वो इस चीज से खुश होता है, उसको ये बात अच्छी लगती है, उसको फूल अच्छे लगते हैं, उसको मिठाई अच्छी लगती है, उसको माफी मांग लेना, उसके घर चले जाते हैं, आप किसी को साथ ले जाते हैं, लेकिन वहां पे जो है वो सफाई सुथराई कैसे होगी, खींचे जाएंगे। और उससे भी अहम क्या है कि मुफलिस कौन होगा, कि ये नहीं कि जो दुनिया में जो था वो गरीब था वहां पे वो गरीब होगा, बेशक वो अमीर भी हो, दुनिया से वो नेकियां लेकर जाए लेकिन उसने ऐसे ज्यादा बुरे अमाल किए हुए हों कि हकूकुल इबाद और हकूक अल्लाह के खिलाफ बहुत से ऐसे अमल किए हुए हों कि फिर उसकी नेकियां जो दूसरे लोग होंगे दावा करने वाले उनमें बांट दी जाएंगी। तो हमें यहाँ पे सोचना चाहिए कि असाबुल जन्ना में दाखिल होने के लिए दिलों की बदमजगियां, रंजिशें और जो भी गिल है उसको दुनिया ही में साफ करना बहुत जरूरी है, और अल्लाह से कोशिश के साथ साथ दुआएं भी मांगनी चाहिए। और कोई कमी बेशी रह जाएगी तो अल्लाह वहां पे जो है खींच कर उनको जो है वो कदूरत को निकाल देंगे। फिर जो जन्नत में जाएंगे उनके लिए और इनाम क्या होगा, तजरी मिन तहतिहुमुल अनहार, उनके नीचे नहरें बहती होंगी। आप अभी पिकनिक में गए तो पिकनिक जो थी वो आपने कहाँ पे मनाई, मिसिसागा वैली पार्क में, है ना। और आप लोगों का इसरार है पूरी अब क्लास का कि आइंदा पिकनिक हमने कहाँ मनानी है? जैक डार्लिंग पार्क में। क्यों? कि वहां पानी भी है, वहां पानी की पूरी नहर भी है, वहां सब्जा भी है, बहुत खूबसूरत नेचर है उसमें, तो हम वहां जाना चाहते हैं ना। कि आप खाना पीना भी चाहते हैं, आप पिकनिक भी करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ आप चाहते हैं कि पानी भी साथ बह रहा हो, ब्यूटी। तो आप सोचें कि दुनिया में हम जिस चीज का तसव्वुर करते हैं और जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि उनके नीचे वहां पे जन्नत में नहरें बह रही होंगी, और यहाँ की नहरों का वहां की नहरों से क्या मुकाबला। वो दूध की नहरें हैं, वो शहद की नहरें हैं, वो शराब की नहरें हैं, वो बहुत ही साफ और शफाफ नहरें हैं, है ना। और उनकी मिट्टी मुश्क की मिट्टी है, उसमें याकूत हैं, हीरे और जवाहरात जड़े हुए हैं। वकालू, और वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा, तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने हमें ये रास्ता दिखाया। ये आयत क्या बता रही है कि जन्नत में दाखला लोगों अपनी कोशिश से नहीं मिल सकता जब तक अल्लाह का फजल ना हो, क्योंकि इंसान की कोशिश भी उसके अपने कब्जे में नहीं है, बल्कि कोई इंसान जो कोशिश कर रहे तो वो भी अल्लाह की तौफीक से ही है ना, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको नेकी की तौफीक दे दे। तो यहां हदायत क्या मुराद है हदायत से, कि जैसे हम क्या कहते हैं, ए दीन सिरातल मुस्तकीम, कि हमें सीधा रास्ता दिखा। तो हदायत से मुराद ईमान, अमले सवाले की जो जिंदगी नसीब हुई, अल्लाह ताला ने अमलों को कबूल किया और जन्नत नसीब हुई, तो ये अल्लाह की खास रहमत है, उसी की तारीफ है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा, उस अल्लाह का शुक्र, उस अल्लाह की तारीफ, उस अल्लाह की रहमत, उस अल्लाह का फजल जिसने ये रास्ता दिखा दिया। ईमान, अमले सवाले, नेकियां, हसनात, दिल बड़ा कर लेना, समंदर जैसा लोगों की बातों को महसूस ना करना, वो तो क्या क्या कहते रहें, क्या क्या करते रहें, सबर का पहाड़ बन जाना, है ना। और दुनिया में रहते हुए जन्नत में महल बनाने की फिक्र करना, ये तो वो किरदार है जो बीबी आसिया ने फिरौन के घर में रहकर अदा किया, कि मेरा फिरौन के महल में अल्लाह दिल नहीं लगता, जन्नत में मेरे लिए महल बना दे। तो अगर आज जन्नत में महल चाहिए तो बीबी आसिया का किरदार अदा करना पड़ेगा, सबर का पहाड़ बनना पड़ेगा, दिलों में वुस्सत, दूसरों के लिए जगह, बदगुमानी न करना, दूसरों की गलतियों को माफ कर देना। और जो भी नेकी करें, जो भी अच्छा काम करें, आप क्लास में आ गए, आप पढ़ रहे हैं, आप काम कर रहे हैं भाग भाग के, आप मदद कर रहे हैं, आपके नोट्स अच्छे हैं, आप अच्छा लिख लेते हैं, आपके पास गाड़ी है, आप अच्छा सबक सुना लेते हैं, आप क्विज में आपकी पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी है, तो ये सब क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा, मेरी कोशिश का इसमें कोई दखल नहीं, मैं करती हूं, लोग मानते नहीं, मैं करती हूं, लोग समझते नहीं, मुझे लोगों ने माना नहीं, उसका कोई दखल नहीं, उस जात का दखल है, ये उसकी किबरियाई है, ये उसकी शान है, ये उसकी अता है, ये उसकी बख्शिश है कि हाँ, मैं और आप, हम नेकियां हम करें और हमें नेकियां करने की तौफीक हो जाए, और फिर इन नेकियों को अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल कर ले। ये बड़ी अहम बात है। وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ, हम खुद हदायत नहीं पा सकते थे, हमें खुद रास्ता नहीं मिल सकता था अगर अल्लाह हमारी रहनुमाई न करता। अगर अल्लाह रहनुमाई न करता तो फिर जो है हमें ये सिराते मुस्तकीम का रास्ता जो था वो नहीं मिल सकता था। तो इससे मुराद क्या है कि यहाँ पे दोबारा वही वाली बात कहना कि हमें ये रास्ता कैसे मिल सकता था अगर अल्लाह हमारी रहनुमाई न करता, तो ये हदाना लिहाजा, फिर लौला अन हदान अल्लाह, इस चीज की तरफ इशारा है कि वो रहनुमाई जो हर तालबे हक को हर कदम पर नसीब होती है। इसमें ये जो राह हक का सफर है ना, इसकी मुश्किलों की तरफ भी इशारा है। अहले जन्नत को जो कामयाबियां मिलेंगी तो क्यों वो इस पर इतना खुश होंगे कि उनकी तवक्कोआत जो हैं, उम्मीदें उनके अंदाजों से इतनी ज्यादा होंगी कि वो इसको अल्लाह का फजल समझेंगे और वो ये समझेंगे कि हमारी कोशिश को इसमें कोई भी दखल जो है वो नहीं है। लकद जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक, हमारे रब के भेजे हुए रसूल वाकई हक लेकर आए थे। तो इस बात को तस्लीम करेंगे कि हमारे जो रब के रसूल थे उनकी जो खिदमात हैं तो उसकी सदाकत का एतराफ करेंगे। आप देखें, आप किसी सफर पर पहुंच जाएं, मंजिल पर पहुंच जाएं और रास्ते में मुख्तलिफ मसाइल मुश्किलात परेशानियों से होते होते जब मंजिल मकसूद पर जब पहुंच जाएं तो ये वो शुक्र है जो मुसाफिर फिर अदा करता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं खैरियत से यहाँ पे पहुंच गई हूँ, ये अल्लाह का फजल ही है कि मैं खैरियत से पहुंच गई, वरना मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल था कि मैं ऐसे जो है वो पहुंच जाती या मेरा ये काम जो है वो अच्छे से हो जाता। तो ये सारी रहनुमाई, ये गाइडेंस, ये तैयारी, ये सारा कुछ जो है ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के फजल से हुआ है। और मुझे इस मंजिल तक पहुंचने में रहनुमाई किसकी, मेरे मुझे काम आई, रसूलों की रहनुमाई। रसूल सच्चे थे। पनूदू अंतिल कुमुल जन्नत उरिस्तुमुहा, पनूदू और उनको आवाज दी जाएगी, फिर आवाज आएगी कि ये है वो जन्नत, उरिस्तुमुहा, जिसके तुम वारिस बनाए गए हो। तो यहाँ पर जो है अब तकमील नेमत की मेराज है ये आयत, कि नेमत की तकमील की मेराज। क्या मतलब कि अहले जन्नत के लिए मनादी हो रही होगी कि अब इस जन्नत के तुम वारिस बना दिए गए हो। किसी को कह दिया जाए कि सारी जमीन तुम्हारी है, ये जो महल है ना अब ये तुम इसके वारिस हो, ये सोना चांदी ये हीरे जौहरात अब तुम इसके वारिस हो, तो इस जन्नत के तुम वारिस बना दिए गए हो। और क्यों मनाए गए, बिमा कुंतुम तअमलून, उन अमाल के बदले जो तुम दुनिया में करते रहे। यहां पर एक बड़ा ही अहम बात है, इसको आप समझें कि पहली बात तो ये है कि जो ही अहले जन्नत को जन्नत मिलेगी तो वो झुक जाएंगे, वो अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, वो अल्लाह की हमदो सना और एहसान मंदी में मसरूफ हो जाएंगे और कहेंगे कि ये हमारे रब का एहसान है कि हमें ये जन्नत मिल गई, वरना हम इस लायक नहीं थे। अब दूसरी तरफ अल्लाह भी अपना एहसान नहीं जताएगा, अल्लाह कहेगा कि तुमने ये दर्जा अपनी खिदमात के सिले में पाया है, ये तुम्हारी अपनी मेहनत की कमाई है जो तुम्हें दी जा रही है, ये कोई भीख का टुकड़ा नहीं है। तो आप देखें कितना खूबसूरत अंदाज है कि जब इंसान तारीफ करेंगे, हमदो सना करेंगे, अल्लाह भी इंतहाई शान करीमी के साथ इस बात का ऐलान करेगा, ये है नेक बंदों का और अल्लाह का मामला। आप देखें दुनिया में वो लोग जो जुल्म करते हैं, जो किब्र करते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो कुछ भी करते हैं कहते हैं ये मेरी कोशिश है ना, ये मेरी कोशिश है, ये मेरी हिम्मत है, ये मेरी काबिलियत है, ये मेरी सही है, ये जो नेमत मिली इसमें मेरी इस कोशिश का दखल है। तो वो क्या है, मुतकब्बिर फासिद बन जाते हैं। जो नेक लोग होते हैं उनको जो कुछ भी मिलता है तो वो क्या करते हैं, शुक्र अदा करते हैं, वो जितने नवाजे जाते हैं उतने रहीम शफीक और झुकने वाले बन जाते हैं। और आखरत के मामले में भी वो नेक लोग अपने हुस्ने अमल पर कभी गुरूर नहीं करते, वो कभी नहीं कहते कि मैंने किया, इतना किया, फलां के लिए किया, फलां नहीं माना, उसने मुझे शाबाश नहीं दी, उसने मुझे प्यार नहीं किया, उसने मुझे पूछा नहीं, है ना, मुझे कुर्सी पे क्यों नहीं बिठाया, मेरे गले में हार क्यों नहीं डाला, नहीं, वो कभी भी मगरूर नहीं होते। वो क्या करते हैं, वो जो कुछ करते हैं अल्लाह के लिए करते हैं और इस बात को समझते हैं कि अगर हम हमसे इसमें कोई कोताही हो गई तो अल्लाह माफ करेगा और नेक अमल के नतीजे में जो भी इनाम मिलता है तो कहते हैं ये अल्लाह का फजल है। और साथ ही डरते रहते हैं कि कहीं हमारे हिसाब में लेने के बजाय कुछ देना ना पड़े। बुखारी मुस्लिम की रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खूब जान लो कि तुम महज अपने अमल के बलबूते पर जन्नत में नहीं पहुंच जाओगे। लोगों ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह क्या आप भी? फरमाया हाँ मैं भी, इल्ला ये कि अल्लाह मुझे अपनी रहमत और फजल से ढांप दे। तो ये है कि उस जन्नत का उनको जो है वो वारिस बना दिया जाएगा। फिर इसके बाद जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत बयान करते हैं कि अहले जन्नत और अहले दोजख के दरमियान क्या मकालमा बाजी होगी, क्या जुमले होंगे जिनका आपस में उनमें तबादला होगा। वनादा अस्हाबुल जन्नती अस्हाबन नारी, फिर जन्नत के लोग दोजख वालों से पुकार कर कहेंगे अनकद वजदना मा वादना रब्बुना हक्कन, के अनकद वजदना हमने तो पा लिया है मा वादना जो वादा किया था रब्बुना हमारे रब ने, और वो क्या पाया हमने उनको हक्कन सच्चा, कि हमने उन सारे वादों को ठीक ठीक पाया जो हमारे रब ने हमसे किए थे। फहल वजद तुम, क्या तुमने भी पाया मा वादा रब्बुकुम हक्का, क्या तुमने भी उन वादों को ठीक पाया जो तुम्हारे रब ने तुमसे किए थे। कालू नाम, वो जवाब देंगे हाँ। अब आप देखिए कि यहाँ पे क्या बात है कि जन्नत और जहन्नुम वाले आपस में बात कर रहे हैं और वो सवाल जवाब कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जन्नत में जो रहने वाले हैं तो वो जहन्नुम वालों से सवाल जवाब कैसे कर रहे हैं, हालांकि वो तो आपस में बहुत दूर हैं, तो कैसे। उसकी वजह जो है, यानी आज से पहले शायद इन आयतों को समझना मुश्किल होता, लेकिन आज जितना इसको समझना आसान है, समझने वालों ने तब भी जो है जो अल्लाह की आयत पर ईमान लाने वाले थे वो कहते थे कि ये सच्ची आयतें हैं ना, लेकिन आज आप देखें कि आप ये जो इंटरनेट है, ये मीडिया है, इसने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। एक जगह एक लम्हे में कोई बात होती है, दूसरे लम्हे दुनिया के कोने कोने में लोग जो है वो सुनते हैं, है ना। इंटरनेट, कंप्यूटर, न्यूज, टीवी, मीडिया, अखबारात, रसायल, दूर दूर खबर आनन फानन जो है वो पहुंच जाती है, है ना। और इसके अलावा आप देखें कि टेलीफोन पर और मोबाइल और सेल पर आप दुनिया के एक कोने में बैठे होते हैं और दूसरे में बात कर रहे होते हैं। आप करते हैं ना बात, आप सुनते हैं ना आवाजें, और फिर अब तस्वीरें भी नजर आती हैं, साथ साथ पिक्चर भी सामने आ रही होती है। तो आप सोचें कि अल्लाह ने इंसान को ये जहन दिया और इंसान जो है अल्लाह के दिए हुए जहन का इस्तेमाल करके अगर इस तरह के काम कर सकता है तो ये अल्लाह की तो किबरियाई है, ये तो अल्लाह की खुदाई है, तो अल्लाह ये काम क्यों नहीं कर सकता। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जन्नत और जहन्नुम जो है ये लोग, इसके लोग आपस में एक दूसरे को देख रहे होंगे, एक दूसरे का इनको नजारा कराया जा रहा होगा, एक दूसरे की बातें सुन रहे होंगे, यानी कहने को ये दूर दूर होंगे लेकिन ये के एक दूसरे को देख रहे होंगे, एक दूसरे को सुन रहे होंगे, एक दूसरे को पहचान रहे होंगे, एक दूसरे से बातें जो है वो कर रहे होंगे। तो इससे मुराद क्या है कि अहले जन्नत और अहले जहन्नुम का मकालमा जो है ये साबित है, और इनको जो सुनने की और देखने की कुव्वतें अता की जाएंगी वो दुनिया की कुव्वतों से ज्यादा कवी होंगी। वहां का निजाम, दुनिया का जो निजाम है ना, रेडार का सिस्टम जो है या जो भी निजाम है, उससे ज्यादा सरीउ तासीर होगा, ज्यादा तेज होगा, ज्यादा बेहतरीन होगा। अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए होंगे, हिलेंगे भी नहीं, एक दूसरे को देखेंगे, सुनेंगे और बोलेंगे। और हमें कुरान में इसकी ताईद और भी जगह पर होती है, सूरत सवाफात में दो लोगों का मुफस्सल से जिक्र आया है जो दुनिया में एक दूसरे के साथी थे, एक मोमिन और दूसरा काफिर, और जो मोमिन वो जन्नत में गया, काफिर जहन्नुम में। अब वहां पे एक दूसरे को वो देखते हैं और फिर बातें करते हैं, जिसका खुलासा क्या है सूरत साफात के दो दोस्तों का, एक जन्नती और एक जहन्नमी का, कि जन्नती साथी झांक कर दोस्ती साथी को देखेगा। तो इसको جنت میں کہیں نظر نہیں آئے گا، تو وہ کہاں پہ اس کو نظر آئے گا؟ وسطِ جہنم میں. اور کہے گا کمبخت، تو تو یہ چاہتا تھا کہ میں بھی تیری طرح برباد ہو جاؤں، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو آج میں بھی تیرے ساتھ جہنم میں پڑا ہوتا. اور تو جو مجھ سے یہ کہا کرتا تھا کہ اس دنیا کی موت کے بعد کوئی زندگی اور کوئی حساب کتاب یا ثواب عذاب ہونے والا نہیں، اب دیکھ لیا کہ کیا ہو رہا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ مطلب قرآن میں اور جگہ پر بھی ہمیں اس طرح کا مکالمہ جو ہے وہ ملتا ہے. سورۃ مطففین کے آخر میں آپ دیکھیں وہاں پہ بھی ہے، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ دنیا میں جو لوگ جو تھے کافر، وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے. جب وہ جاتے تھے نا راستوں میں تو ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے، تو آج جو ہیں ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں، اور وہ تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور مل گیا نا بدلہ کافروں کو ان کے عملوں کا جو وہ کر رہے ہیں. تو آپس میں مکالمہ بازی. تو اب آپ دیکھ لیں کہ اب اہل جنت جہنمیوں کو پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں تو وہ ساری نعمتیں مل گئی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے راحتیں نعمتوں کا وعدہ کیا تھا، اب تم بتاؤ، اب تم بتاؤ، فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کہ تمہارے سامنے بھی وہ چیز آ گئی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، یعنی وہ عذاب جس سے تمہیں ڈرایا گیا تھا، اب وہ تمہیں ملا کہ نہیں؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا نعم، وہ اس بات کا اقرار کریں گے. اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات غزوہ بدر میں جو کافر مارے گئے تھے ان کی لاشیں ایک کنویں میں پھینک دی تھی، تو انہیں خطاب کرتے ہوئے کہی تھی، جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا آپ ایسے لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں جو فوت ہو چکے. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں انہیں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، لیکن اب وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے. یعنی غزوہ بدر کے بعد کیا کہا تھا کہ ہم نے تو اللہ کے وعدے کو سچ سمجھ لیا، سچا پایا، جیت گئے نا مسلمان فرقان، اور وہ لوگ جو تھے وہ ہار گئے، اور بڑے بڑے کافروں کے سر جو تھے، سردار جو تھے ان کے، وہ مٹی میں ڈھیر تھے. تو بتاؤ کیا تم نے بھی اس کو سچ پایا؟ تو عمر رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ آپ ان سے یہ کہہ رہے ہیں اور یہ تو بول بھی نہیں سکتے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے جو کچھ کہہ رہا ہوں تم سے زیادہ سن رہے ہیں، لیکن اب وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ اللَّهِ، پھر ایک منادی دینے والا ان کے درمیان پکارے گا. مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان پکارے گا. کن کے درمیان؟ جنتی اور جہنمی جو آپس میں باتیں کر رہے ہیں، مکالمہ بازی ہو رہی ہے، اب ان کے درمیان جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ منادی کرے گا. کیا کہے گا؟ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، کہ اللہ کی لعنت ہے، وہ لوگ رحمت سے محروم ہیں جو ظالم ہیں. کون ظالم؟ جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ ان کا راستہ بھی سیدھا نہ رہے، اور وہ آخرت کا انکار کیا کرتے تھے. الذین یصدون عن سبیل اللہ، کیوں اللہ نے لعنت کی؟ کہ اللہ کے راستے سے خود رکتے تھے، دوسروں کو روکتے تھے، ظلم کرتے تھے، دوسروں کو ظلم کرنے پر اکساتے تھے، اللہ کی آیات کا خود مذاق کرتے تھے، دوسروں کو چاہتے تھے وہ بھی مذاق کریں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے، یعنی اب یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے دین کے معاملے میں پیچیدگی پیدا ہو، الجھاؤ ہو، لوگ صراط مستقیم جو ہیں اس کو قبول ہی نہ کریں. لوگ کیا کریں؟ ان کا انکار کر لیں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ اسلام کی راہ سے روکنا جو ہے وہ اللہ کی لعنت کا مستحق بنا دیتا ہے. اور یہاں جو ظالم ہیں اس سے مراد کافر بھی ہیں، مکہ کے کافر بھی، ہر دور کے کافر بھی، اور اس سے اس میں مسلمان بھی آتے ہیں. اب دیکھیں مسلمان جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اس کے باوجود وہ اللہ کی آیات سے رکتے ہیں اور روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کے دین کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں. कोई कहता है कि हाँ इस्लाम जो है आज के दौर में इस पर अमल नहीं हो सकता, कोई कहता है इतनी भी मुल्लानी बनने की जरूरत नहीं है, और ये क्या हर वक्त सब नमाजें, चलो फिर देखा जाएगी, और फिर ये कि इस चीज पर तो हम अमल कर ही नहीं सकते, और मेरी नन्ही सी जात और मैं फिर कैसे करूँ ना, और हमें तो दुनिया भी रखनी है, और आज यहाँ पे रहते हुए तो फिर यहाँ के लिबास को जो है वो हमें कबूल करना ही पड़ेगा, अब मजबूरी है। तो बहुत सी ऐसी जुमले, बहुत सी ऐसी बातें कि जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि मजबूर हैं, कि सूद जो है इसको खाना हमारी मजबूरी है ना, या कुरान ने जो हुदूद मुकर्रर की हैं कहते हैं सजाए वहशियाना है ना, और या फिर ये कि जो कुरान में अल्लाह की आयात हैं, जैसे अगर तलाक किसी ने दे दी और उसके बाद जो है अब तलाक मुकम्मल होने के बाद तो शादी नहीं हो सकती है ना, इल्ला ये कि हलाला, और हलाला किया नहीं जाता, लेकिन अब ये भी एक तरीका है कि लोग कहते हैं कि हलाला कराया दुनिया को पता ना चले, है ना। तो ये सब चीजें क्या हैं कि दीन के अंदर एक इवज पैदा करना है, पेड़ पैदा, सीधी रास्ता है सीधा जो सिराते मुस्तकीम का है, और लोग ऐसी बातें ऐसी हरकतें करते हैं कि इस्लाम के रास्ते से रुकते हैं, रोकते हैं, और अल्लाह के दीन को टेढ़ा करना चाहते हैं। और क्यों टेढ़ा करते हैं लोग, ऐसा क्यों करते हैं, वहुम बिल आखिरति काफिरून, के लोग आखिरत के मुनकिर हैं। दरअसल लोग दीन का इनकार क्यों करते हैं, दीन को कबूल क्यों नहीं करते, उस पर कबूल करने के बाद अमल क्यों नहीं करते, या बाज आयतों पर अमल करते हैं और बाज पर अमल नहीं करते, या बाज जगहों पर अमल करते हैं और बाज जगहों पर अमल नहीं करते, उसकी वजह उनकी आखिरत पर ईमान नहीं है, रोजे आखिरत पर ईमान पर कमजोरी है, उनको यकीन ही नहीं है कि मरेंगे अल्लाह के सामने जाएंगे और फिर हमें जवाबदेही करनी होगी और फिर हमें हिसाब किताब जो है वो करना होगा। वबैनहुमा हिजाब, इन दोनों ग्रोहों के दरमियान एक हिजाब होगा, और हिजाब जो है इससे क्या मुराद है, कहते हैं कि हिजाब से मुराद हिसार है, जिसको सूरत हदीद की आयत में लफ्ज सीन मौरा सूर से ताबीर किया गया है, और इसके मानी क्या होते हैं, दीवार के। तो इनके दरमियान एक ऑट हाइल हो जाएगी, एक आड़ होगी, ये जो जन्नत और जहन्नुम में लोग हैं आपस में इनकी गुफ्तगू हो रही है और फरिश्ते ने मनादी की, अब हिजाब आ गई, एक दीवार है, और सूरत हदीद में आयत नंबर जो है वो सूरत हदीद की 13 क्या फरमाया, फदोरी बबैनहुम बिसूरिल लहु बाब बातिनुहु फीहि रहमतु वज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब, इनके और उनके दरमियान एक दीवार हायल कर दी जाएगी जिसमें दरवाजा भी होगा, इसके अंदरूनी हिस्से में तो रहमत होगी और बाहर की तरफ अजाब होगा। तो यहाँ जो है इससे क्या मुराद है कि किस तरह इनके दरमियान जो है एक दीवार जो है वो हायल कर दी जाएगी। तो अब आप देख लें, कहते हैं कि सूरत हदीद में इसको सीन वौरा यानी सूर से दीवार से ताबीर किया गया है, और ये जो दीवार है इसके बलाई हिस्से का नाम, दीवार के जो ऊंचा हिस्सा है ना उसका नाम आराफ है, क्योंकि आराफ उर्फ की जमा है, और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि घोड़े की पेशानी की चोटी और मुर्ग की कलगी को भी जो है वो उर्फ यानी आयन राफा कहते हैं, क्योंकि वो तमाम अतराफ और जानिब से उसको देखा जा सकता है। तो कोई भी ऊंची दीवार होती है जो जो या पहाड़ी पर कोई चीज जो बनाई जाती है वो दूर से नजर आती है। तो अब जन्नत और दोजख के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी, हिजाब वालल आराफी, और इसकी बुलंदी पर रिजाल यारिफूना कुल्लम बिसीमाहुम, उसकी बुलंदियों पर कुछ और लोग होंगे जो हर एक को उसकी निशानियों से पहचानेंगे। तो अब आप देखिए कि ये तो पता चल गया कि आराफ क्या है, यानी जन्नत और जहन्नुम के दरमियान एक जगह है, उसको जो है वो आराफ कहते हैं। असहाबुल आराफ कौन है? ये वो लोग हैं जो के इस जगह पर होंगे, जो के जन्नत और जहन्नुम के दरमियान जो है वो होंगे। इनकी जिंदगी में नेकियां इतनी ज्यादा नहीं होंगी, नेकियों का पहलू इतना कवि और भारी नहीं होगा कि जन्नत में दाखिल हो सके, और ना मनफी पहलू इतना खराब होगा कि इनको दोजख में डाल दिया जाए। अब ये जन्नत और जहन्नुम के दरमियान एक सरहद पर रहेंगे। मुफस्सरीन जो इनके बारे में बताते हैं कि ये कौन लोग हैं, जैसे यहां पर आप देखें कि कुल लम बेसीमा हम, कुल का लफ्ज आया है, तो अब पीछे मुख्तलिफ लोगों का, मुख्तलिफ जमातों का जिक्र किया जा रहा है, तो इससे मुराद वही दो ग्रोह हैं, है ना, और मुख्तलिफ लोग हैं जो इनका भी जिक्र हुआ है। तो कुल्लम बेसीमा हम, ये जो अराफ पर लोग होंगे ये जन्नतियों को भी उनकी निशानियों से पहचान लेंगे, कयाफे से, अंदाजे से जो निशानियां उनकी, और ये जहन्नमियों को भी पहचान लेंगे, बीच में है ना, उनको भी देख रहे हैं, उनको भी देख रहे हैं और उनको पहचान रहे हैं। समझ आई बात की? यानी यहां इससे मुराद किन को ये पहचानेंगे, ये वही अहले जन्नत और अहले जहन्नुम जिनका भी जिक्र हुआ है। तो इसकी जो तारीफ मुफस्सरीन करते हैं इसके लिए मुख्तलिफ अकवाल है, उससे क्या मुराद है, जैसे सहाबाए कराम का एक ग्रोह जो है वो ये कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहले आराफ के बारे में पूछा गया, और ये जो रवायत है ये इब्ने जुरैर रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु से उसको नकल किया है। कहते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो लोग हैं कि जिनकी नेकियां और बुराइयां बराबर होंगी, इसलिए जहन्नुम से तो निजात हो गई मगर जन्नत में अभी दाखिल नहीं हुए। इनको इस मकाम आराफ पर रोक लिया गया यहां तक के तमाम अहले जन्नत और अहले दोजक का हिसाब और फैसला हो जाने के बाद इनका फैसला किया जाएगा और बिलाखिर इनकी मगफिरत हो जाएगी और जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। और इसके अलावा हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह उन्होंने नकल किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अहले आराफ कौन है, आपने फरमाया ये वो लोग हैं जो अपने वालिदैन की मर्जी और इजाजत के खिलाफ जिहाद में शरीक हो गए और अल्लाह की राह में शहीद हो गए, तो इनको जन्नत के दाखिले से माँ बाप की नाफरमानी ने रोक दिया और जहन्नुम के दाखिले से शहादत फी सबीलिल्लाह ने रोक दिया। अब आप देखें कि पहली हदीस और इस हदीस में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, कोई तजाद नहीं है, बल्कि असल बात क्या है कि इन लोगों की नेकियां और गुनाह बराबर दर्जे के हैं। क्यों? एक तरफ उन्होंने शहादत फी सबीलिल्लाह जैसा बड़ा अमल किया, दूसरी तरफ माँ बाप की नाफरमानी जैसा गुनाह कबीरा किया, तो अब गुनाह कबीरा उनको जन्नत में जाने नहीं दे रहा और वो जो नेक अमल किया है वो उनको जहन्नुम में जाने से जो है वो रोक रहा है। तो बहरहाल इसी तरह अब एक सवाल और पैदा होता है कि अहले जन्नत और अहले दोजख अपनी नुमाया अलामतों से कैसे पहचाने जाएंगे, ये जो है ना सीमा विसीमा हम, तो हमें कुरान मजीद और अहदीस से इस बात के इशारे पता चलते हैं कि कयामत में अहले ईमान और अहले कुफर दोनों अपने अपने अमाल के असरात से मुमताज होंगे, पहचाने जाएंगे। मुस्लिम शरीफ में एक हदीस है कि लोगों ने रसूलुल्लाह से पूछा कि आपकी उम्मत में से जो लोग आपके बाद आएंगे आप इनको कैसे पहचानेंगे, आपने फरमाया अगर एक शख्स के पंच कल्याण घोड़े दूसरे घोड़ों में मिले हुए हों, जैसे पांच जगह उसके निशान हो ना घोड़े पे, पंच कलियां घोड़ा, एक घोड़ा है उसका एक ही रंग है और पांच उसके मुख्तलिफ उसके ऊपर निशान लगे हुए हैं, तो पंच कल्याण घोड़े दूसरे घोड़ों में मिले हुए हों तो क्या वह इनको पहचान ना लेगा? लोगों ने कहा ये बात तो ठीक है यार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया इसी तरह मेरी उम्मत के लोग कयामत के दिन अपने वुजू के आसार से इस तरह नुमाया होंगे कि इनकी पेशानियां और इनके हाथ पांव चमकते होंगे। और अबू लहब की बीवी के मुतल्लिक कुरान में आपने पढ़ा ही है ना कि कयामत के दिन इसके गले में इस तरह की रस्सी पड़ी हुई होगी जिस तरह की रस्सी ईंधन जमा करने वाली लौंडियां अपने गले में डालकर लकड़ियां चुनने के लिए निकला करती थी, है ना? आपने कुरान मजीद में पढ़ा है ना उसके बारे में कि अबू लहब और उसकी बीवी कहाँ जाएगी? जहन्नुम में जाएगी। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उसके बारे में क्या फरमाते हैं कि जब वो जहन्नुम में जाएगी तो इतना ही नहीं होगा कि वो जहन्नुम में जाएगी बल्कि उसकी हमें निशानी पता चलती है। हाँ, फी जी दिहा हबलुम मिन मसद। तो यहाँ पर भी यही बात जो है बताई जा रही है। और आप देखें कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर जब गए थे तो आपको बताया गया था कि मतलब अहले जन्नत जो हैं वो जन्नत में हैं और बैठे हुए कुरान की हजरत एक सहाबी हजरत हारसा बिन नुमान तिलावत कर रहे हैं। कौन है ये, क्यों है ये, अपने माँ बाप की खिदमत किया करते थे, है ना? इसी तरह अहले जहन्नुम जो है उनके भी मखसूस उनके गुनाहों की वजह से उनको मुख्तलिफ तरह का अजाब दिया जा रहा है। सूद खाने वाला है, गीबत करने वाला है, है ना? तो ये निशानियां हैं जिनसे पहचान लिया जाएगा। वनादौ असहाबल जन्नति अन सलामुन अलैकुम, और जन्नत वालों से पुकार कर कहेंगे कि सलामती हो तुम पर। ये कौन कहेगा? ये कौन लोग कहेंगे कि तुम पर जो है वो सलामती हो? ये अराफ के लोग कहेंगे। अराफ के लोग जो हैं आवाज देंगे, पुकारेंगे और उनसे कहेंगे कि तुम पर सलामती हो। अहले अराफ अहले जन्नत को आवाज देकर कहेंगे सलामुन अलैकुम। अब आप देखिए दुनिया में भी जब किसी से मिला जाता है तो सलाम किया जाता है और मसनून है। और इसके अलावा आप देखें कि दुनिया में सलाम जो किया जा रहा है अब वहां पे भी वो लोग जो हैं वो सलाम कर रहे हैं, अन सलामुन अलैकुम, कि तुम पर सलामती हो। क्यों सलामती हो? हमें और भी कुरान में इसका जिक्र मिलता है कि जन्नती जो हैं वहां पे उनके लिए सलामती होगी, उनको सलाम से उनका इस्तकबाल किया जाएगा। कभी अल्लाह की तरफ से सलाम किया जाएगा उनको, कभी फरिश्ते करेंगे, अब अराफ वाले भी उनको कर रहे हैं, है ना? जैसे सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनेमा उकबदार, सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। तो ये जो जन्नती लोग हैं इनको जो है वो आराफ के लोग अब सलाम कर रहे हैं, उन पर सलामती भेज रहे हैं। जाहिर है वो अब जन्नत में पहुंच चुके हैं, इससे बढ़कर सलामती क्या हो सकती है? अब लम यदखुलूहा वहुम यतमऊन, ये लोग जन्नत में दाखिल तो नहीं हुए मगर इसकी उनको एक उम्मीद है। अब ये लोग जो हैं आराफ वाले जन्नत में नहीं दाखिल हुए, वो देख रहे हैं कि जन्नतियों को जो वादे हुए थे सारे पूरे हो गए हैं, आंखों से मुशाहिदा कर रहे हैं। एक तरफ देखते हैं तो जन्नत के नजारे हैं, जन्नती लोग हैं, मजे कर रहे हैं, खुशगपियों में है, तख्त पर है, नेमतों के साथ हैं। दूसरी तरफ नजर दौड़ाते हैं तो जहन्नमी है, हौलनाकियां हैं, दहशत है, आग है, सांप है, बिच्छू हैं। तो आप सोचें कि जन्नत में दाखिल नहीं हुए लेकिन ये कि उनको इसकी एक उम्मीद है। क्या मतलब है इसका? आप उनकी ज़हनी कैफियत का अंदाजा करें कि अल्लाह की जात से वो ये उम्मीद रखते हैं, उनको एक तमा है कि अल्लाह ताला मुझे जो है वो हमें जो है वो जन्नत में भेज देगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो क्या फरमाते थे? वल्लज़ी अतमउ अन यग़फिर ली ख़तीअति यौमिद्दीन। सूरह शुरा में उनके बारे में आता है कि वो ये कहते थे और वो कि जिससे मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि वो जजा सजा के दिन मेरी गलती फरमा देगा, माफ कर देगा मेरी गलती को ना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो ये बात कही थी ना एक मरतबा कि कोई अपने अमल से जन्नत में नहीं जा सकता। लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह आप भी? तो फरमाया हाँ मैं भी, इल्ला ये कि मैं उसी वक्त जन्नत में जाऊंगा जबकि अल्लाह मुझे अपनी रहमत से ढांप ले। तो अब जो है वो जन्नतियों को देख भी रहे हैं और उसके साथ उनको उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें जो है वो जन्नत में भेज दे। और आप सोचें कि ऐसे वक्त में जबकि आपको कभी इत्तफाक हुआ चांस की सीट पर सफर करने का, कुछ लोगों ने तो जिन्होंने जाना नहीं वो घर बैठे हैं, जिन्होंने जाना है वो जहाज पर चढ़ रहे हैं, आप जाना चाहते हैं, सामान भी पैक है, हाथ में टिकट है, लेकिन आप खड़े इंतजार कर रहे हैं, एक एक जाता जाता है और आप उम्मीद में हैं कि शायद मुझे भी चांस मिल जाए, शायद मुझे भी चांस मिल जाए। तो जो चांस की सीट वाला होता है उसको कितने धक्के लगते हैं, कितनी मुश्किल होती है ना। तो हर एक को देखता है कि शायद कोई वाकिफ कोई मिल जाए, कोई कोई सहारा हो जाए, और मेरी बड़ी मजबूरी है और मेरा बड़ा जरूरी काम है, मेरा इंटरव्यू है, मेरा इम्तिहान है, मेरी जॉब है, मैंने ज्वाइन करना है, कोई डेथ हो गई है, बहुत जरूरी है, मैं जाना चाहता हूँ। लेकिन चांस वाले का जाना यकीनी नहीं होता, जितना ना जाना यकीनी होता है उतना ही जाना, दोनों कैफियात के बीच बीच में। और ये चीज बड़ी अजियत की होती है, बड़ी मुश्किल चीज होती है। बहुम यतमाउन, और वो उम्मीद रखते होंगे। वाइजा सुरिफत अबसारुहुम तिल्का असहाबिन नार, और जब उनकी निगाहें दोजख वालों की तरफ फिरेंगी। सुरिफत, अब उनकी निगाहें जन्नत वालों से हटाकर कहां फेर दी जाएंगी, दोजख वालों की तरफ उनकी निगाहों को जो है वो फेर दिया जाएगा। और जब उनकी निगाहें दोजख वालों की तरफ फेरेंगी, तिल्का असहाबिन नारी, तरफ जहन्नम वालों के, अब वो अपनी इन निगाहों से जहन्नम वालों को देखेंगे। अब यहां पर जो है अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो आराफ के लोग हैं, एक तरफ जब जन्नत की नियमतों का नजारा कर रहे हैं, तो अब इनको अहले दोजख की तरफ भी तवज्जो दिलाई जाएगी कि जरा देखो तो सही, दुश्मनाने हक थे उनका क्या अंजाम हुआ। अब उनको अजाब में देखेंगे, उनको तकलीफ में देखेंगे, उनको परेशानी में देखेंगे, और देखेंगे कि जहन्नुम में वो लोग हैं जो कि दुनिया में अल्लाह की आयात का मजाक उड़ाया करते थे। जो ही उनको देखेंगे उनकी जबानों पर ये जारी हो जाएगा, قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين, फौरन पुकार उठेंगे हमारे रब हमें इन जालिम लोगों में शामिल न कर देना, कहेंगे कि अल्लाह हमें इन जालिम लोगों में शामिल न कर। अब फौरन देखते ही उनकी ये कैफियत होगी कि अल्लाह से दुआ फौरन बेतहाशा तावुज की दुआ उनकी जबान से निकलेगी। ऊपर आप पढ़ी चुकी ना वहुम यतमाउन, जिसे उनकी आजजी का अंदाजा होता है। अब यहां पे ये जो दुआ निकलेगी ये भी फौरन खशियत का कमाल है कि जहन्नुम के मंजर की हौलनाकी जब उनके सामने आएगी तो फौरन कहेंगे कि अल्लाह तू हमें इन लोगों में शामिल ना करना, है ना। और जहन्नुम जो है हकीकत है कि ये जान का अजाब है, और ये बहुत ही ज्यादा इंसान के जिस्म को जो है वो घुला देने वाला है। आप देखें कि कुरान में हमें सूरत अल फुरकान में भी ये बात जो है वो पता चलती है कि जो नेक लोग हैं वो क्या दुआ करते हैं, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا। तो ये है नेक लोग जो ये दुआ करते रहते हैं। सूरत अल फुरकान आयत 65 और 66 कि ये जालिम लोग जो हैं इनमें हमें शामिल ना करना। हम भी अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि रब्बना ला तजलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार।